सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धे व्युत्थसयले अज्जत्तबहित्तबन्धनं मुके बत्तिये अहं नमियुं पुनो पुनो बंधनम वोचम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अभी हमारी चौदहवीं पुस्तक चल रही है, कल से शुरू किए वही पंचम खंड वर्गणा खंड चल रहा है। षट खंडागम में से पंचम खंड अपना चल रहा है, तेरहवीं पुस्तक चौदहवीं पुस्तक, उसमें बंधन अनुयोग द्वार की चर्चा भी हमारी चलेगी। हम पृष्ठ संख्या 15 पर आ गए हैं। यहाँ जीव भावबंध की बात चल रही है, उसमें भी नौ आगम भाव बंध की बात हमारी चल रही है। भाव बंध दो प्रकार का, आगम भाव बंध, नौ आगम भाव बंध। नौ आगम भाव बंध दो प्रकार का, जीव भाव बंध और अजीव भाव बंध। जीव भाव बंध भी तीन प्रकार का देखा, विपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध, अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध और तदुभय प्रत्ययिक जीव भाव बंध। विपाक प्रत्ययिक में किसको लिया था हमने? औदयिक भावों को, उदय और उदीर्णा जो होती है और वहां जो जीव के भाव है, तो उसको विपाक प्रत्येक कहा था। अविपाक प्रत्येक में औपशमिक और क्षायिक जो भाव है उसको लेना है, और तदुभय में क्षौपशमिक को लेंगे। हमें औपशमिक की बात चल रही थी अपनी, कल हमने 17 नंबर का सूत्र पढ़ा था, ये फिर उसका अर्थ देखकर हम आगे बढ़ेंगे। देखो 17 का अर्थ नीचे 14वें पृष्ठ पर। अनिवृत्तिकरण में क्रोध के उपशम से जो भाव होता है वह औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्य क्रोध और भाव क्रोध के उपशम से उत्पन्न होता है। उपशांत मान जीव के जो भाव होता है वह औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्यमान और भावमान के उपशम से उत्पन्न होता है। उपशांत माया जीव में जो भाव होता है वह औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्य माया और भाव माया के उपशम से उत्पन्न होता है। उपशांत लोभ जीव में जो भाव होता है वह भी औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्य लोभ और भाव लोभ के उपशम से उत्पन्न होता है। उपशांत जीव में जो भाव होता है, उपशांत राग जीव में जो भाव होता है वह औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह माया लोभ हास्य रति और तीन वेद रूप द्रव्य कर्मों के उपशम से उत्पन्न होता है। उपशांत दोष जीव में जो भाव होता है वह औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह क्रोध मान अरति शोक भय और जुगुप्सा रूप द्रव्य कर्मों के उपशम से उत्पन्न होता है। यहाँ भाव नहीं लिया, उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ वीतरग हुआ है। ये तो यहां तक तो हमने कल पढ़ा था, अभी ये आगे पढ़ेंगे। उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ जीव में जो भाव होता है वह औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह 25 कषाय रूप द्रव्य कर्मों के उपशम से उत्पन्न होता है। जो औपशमिक सम्यक्त्व है वह औपशमिक अविपाक प्रत्यय जीव भाव बंध है, क्योंकि वह चाहिए। क्योंकि वह तीन प्रकार के दर्शन मोहनीय द्रव्य कर्म के उपशम से उत्पन्न होता है। जीव भाव बंध लिया इसको, अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध। जो औपशमिक चारित्र है वह भी औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि चारित्र मोहनीय की देशोपशमना यानी देशोपशमना यानी पार्शल और सर्वोपशमना से उत्पन्न होता है। चूंकि ये पूर्वोक्त भाव और दूसरे भी अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत कषाय गुणस्थानों में प्रत्येक समय में उत्पन्न होने वाले जो जीव के भाव है वे सब या वह सब औषमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है। वो भाव बंध के लिए वह लगाया उन्होंने, क्या कहने यहाँ जो कोई भाव है उन सबका एक नाम लिया उन्होंने, औषमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध। वहाँ जितने एक एक समय वाले भी भिन्न भिन्न भाव होंगे उस सबको लेना इसमें। अब चाइक की बात बताएंगे, यहाँ हम पहले ऊपर का सूत्र पढ़ते हैं। जो सो खयो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो नाम तस्स इमो निर्देशो, से खीण कोहे खीण माने खीण माए खीण लोहे खीण रागे खीण दोसे खीण मोहे खीण कसाय वीराय चदुमत्थे खय्य सम्मत्तम खय्य चारित्तम खय्या दान लद्धि खय्या लाह लद्धि खय्या भोग लद्धि खय्या परिभोग लद्धि हरी खय्या वीरिय लद्धि केवप्पाणम केवलप्पाणम केवलप्पाणम ज्ञानम चाहिए ना, नाणम नाणम चाहिए। हाँ न न है वो, मैंने भूल से प पढ़ा, केवल ज्ञान के लिए वो केवल नाणम केवल दंसनम सिद्धे बुद्धे परिनिवुदे सव दुखाणम अंतयडे तीजे चामण्य एवं आदिया खय्या भावा सो सव्वा खय्यो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो नाम। वो सो सव्वो में थोड़ी गैप चाहिए, सो सव्वो वह सब। अब हम नीचे पढ़ते उसका अर्थ। इतने यहाँ जो सारे क्षायिक भाव गिनाए और उसके साथ साथ और भी सिद्धो बुद्धो ये सब ले लिए उसमें। जो क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है उसका निर्देश इस प्रकार है। क्षीण क्रोध क्षीण मान क्षीण माया क्षीण लोभ क्षीण राग क्षीण दोष क्षीण मोह क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थ क्षायिक सम्यक्त्व क्षायिक चारित्र क्षायिक दान लब्धि क्षायिक लाभ लब्धि क्षायिक भोग लब्धि क्षायिक परिभोग लब्धि क्षायिक वीर्य लब्धि केवल ज्ञान केवल दर्शन सिद्ध बुद्ध परिनिर्वृत्त सर्व दुख अंतकृत। इसी प्रकार और भी जो दूसरे क्षायिक भाव होते हैं वह सब क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है। अब इसको समझाएंगे हर एक को, एक एक को। क्षीण क्रोध जीव में जो भाव होता है, जब क्षीण क्रोध पहले तो कौन सा लिया था, उपशांत क्रोध लिया था। अब ये क्षीण क्रोध में ने क्रोध का जिसने क्षय कर दिया है वह क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्य और भाव क्रोध के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होता है। क्षीण मान वो क्षाण दिख रहा है, क्षीण करो उसको। क्षीण मान जीव में जो भाव होता है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्यमान और भावमान के क्षय से उत्पन्न होता है। क्षीण माया जीव में जो भाव होता है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह दो प्रकार की माया के क्षय से उत्पन्न होता है। क्षीण लोभ में जो जीव में जो भाव होता है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह दो प्रकार के लोभ के क्षय से उत्पन्न होता है। हाँ, सब में तो क्रोध, मान और माया लिखा, और लोभ में क्या लिखा है? दो प्रकार के लोभ, यानी कौन से? बादर और सूक्ष्म। माया में भी दो लिए। हाँ हाँ, जो भाव तक शाही कवि पाक प्रत्येक, एक मिनट है, द्रव्य और भाव सॉरी, दो प्रकार के नहीं, द्रव्य और भाव, बादर और सूक्ष्म नहीं। क्योंकि जब हम क्षीण लोभ कह देंगे तो सभी लोभ निकल जाएगा ना। ऊपर तो द्रव्य और भाव शब्द डाले थे, नीचे वह दो प्रकार के लिख दिया। क्षीण राग जीव में जो भाव होता है वह भी अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह दोनों प्रकार के, या लिख दिया अभी सबके लिए दोनों प्रकार के लगाना, माया लोभ हास्य रति और तीन वेद रूप कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है। पहले ऐसे उपशम में ये दो प्रकार के ऐसे शब्द नहीं डाला था उन्होंने। क्षीण दोष जीव में जो भाव होता है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह दोनों प्रकार के क्रोध, मान, रति, शोक, भय और जुगुप्सा रूप कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है। क्षीण मोह जीव में जो भाव होता है वह क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह 28 प्रकार के मोहनीय के क्षय से उत्पन्न होता है। ये सारे दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय सब कुछ क्षय हो जाता है। हाँ, क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थ जीव में जो भाव होता है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह 25 कषायों के निशेष क्षय से उत्पन्न होता है। क्षीण राग का क्षीण मोह भी कर दिया और क्षीण कषाय भी कह दिया, बात तो एक ही है, परंतु वो शब्द अलग अलग आए इसलिए उसको अलग रीति से बताया। जो क्षायिक सम्यक्त्व है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह दर्शन मोहनी के क्षय से उत्पन्न होता है। जो क्षायिक चारित्र है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह चारित्र मोह के क्षय से उत्पन्न होता है। जो क्षायिक दान लब्धि है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह दानांतराय के निर्मूल क्षय से उत्पन्न होती है। लब्धि लिखा ना, इसलिए होती है कहा। शंका, अरहंतों के दानांतराय का तो क्षय हो गया है, फिर वे सब जीवों को इच्छित अर्थ क्यों नहीं देते? दान देना है ना, क्या इच्छित अर्थ देना, तो उनके तो दानांतराय का क्षय हो गया है, तो सबको इच्छित अर्थ क्यों नहीं देते, ऐसा प्रश्न पूछा। समाधान, नहीं, क्योंकि उन जीवों के लाभांतराय कर्म का सद्भाव पाया जाता है। लेने वालों का लाभांतराय चल रहा है ना, भले इनको दान जो क्षायिक लाभ लब्धि है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह लाभांतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होती है। फिर शंका, अरिहंतों के यदि लाभांतराय कर्म का क्षय हो गया है तो उनको सब पदार्थों की प्राप्ति क्यों नहीं होती? उसका समाधान, सत्य है, उन्हें सब पदार्थों की प्राप्ति होती है, क्योंकि उन्होंने अशेष भुवन को अपने अधीन कर लिया है। सब प्राप्त ही है ना, उनके तीनों लोक, तीनों काल, सभी उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। जो क्षायिक भोग लब्धि है वह भी क्षायिक करना उसको वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह भोगांतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होती है। जो क्षायिक परिभोग लब्धि है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह परिभोगांतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होती है। शंका, यदि अरहंतों के भोगांतराय और परिभोगांतराय कर्म का क्षय हो गया है तो वे अन्य पदार्थों का उपभोग और परिभोग क्यों नहीं करते? उनके तो क्षय हो गए ना, अभी अंतराय का क्षय हो गया है। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि जो जीव क्षीण कषाय होते हैं उनका उपभोग परिभोग से प्रयोजन नहीं रहता, उनके इच्छा नहीं है ना। जो क्षायिक वीर्य लब्धि है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह वीर्यांतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होती है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वे क्रमशः केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होते हैं। यह फुल स्टॉप देना। जो सिद्ध भाव है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह आठों कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है। देखो, हमने पहले असिद्धत्व भाव लिया था औदयिक में लिया था ना, तो यहाँ क्षायिक में सिद्धत्व भाव लिया, सिद्ध। जो बुद्ध भाव है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह अंतरंग और बहिरंग आवरण के क्षय से उत्पन्न होता है। ये ज्ञान दर्शन वाला उसी को बुद्ध में समझना, अंतरंग बहिरंग आवरण चला गया। जो परिनिवृत्त भाव है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक है, क्योंकि वह अशेष कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है। परिनिर्वाण कहो या मोक्ष कहो, एक ही बात है। सब दुखों का अंतकृत्व भी, अंतकृत करना है ना, उसका नाश करना। सब दुखों का अंतकृत्व भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक है, क्योंकि वह सब दुखों के क्षय से उत्पन्न होता है। ये पूर्वोक्त भाव और दूसरे भी भाव जो प्रति समय उत्पन्न होते हैं वह सब क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है। विशेषार्थ देखते हैं। यहाँ क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध 21 गिनाए हैं, और इनके साथ प्रति समय होने वाले अन्य क्षायिक भावों की सूचना की है। तत्वार सूत्र में क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और 5 क्षायिक लब्धियां, ये कुल 9 भाव गिनाए। अभी हम भी जब गिनते हैं ना, 9 क्षायिक भाव गिनते हैं। यहाँ गिनाए गए भावों में कुछ ऐसे भाव अवश्य हैं जिनका अलग से उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है, जैसे सिद्ध भाव, सर्व दुख अंतकृत भाव आदि। शेष का कथनचित अंतर्भाव हो जाता है। अन्य जो भाव है वो तो अंत, जैसे वो बुद्धत्व भाव है वो तो उसमें आवरण वाला कक्षय हुआ, तो उसमें ज्ञान दर्शन में वो अंतर्भूत हुआ था। यद्यपि 5 लब्धियों का काम बाह्य सामग्री की प्राप्ति नहीं है, प्राप्त नहीं है, प्राप्ति चाहिए, किंतु कहीं कहीं उनका काम बाह्य सामग्री की प्राप्ति बतलाया गया है, वह तो सो जो उपचार कथन है। क्या कहना चाहते हैं? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, तो उनके जो आवरण बाधा वाले अंतराय वाले कर्म दूर हो गए, तो जीव के ये गुण हैं वो प्रकट हो गए हैं। परंतु ये बाह्य पदार्थों का लाभ होना, बाह्य पदार्थों का दान देना, उसका भोग लेना, ये उसका अर्थ नहीं है। यहाँ उपचार से उसका कथन किया है। जीव के ये जो गुण हैं उसके पूर्ण परिपूर्ण स्वभाव रूप से उसके पर्याय प्रकट हो गई है। तो जीव अपने ये परों को देने लेने की बात ही नहीं है, अपने आप को ही पर्याय में जो सारा ये जो अनंत ज्ञान, अनंत सुख प्रकट हुआ है, उसने अपने को ही दान दिया है। उसी का वो भोग करता है, उसी का परिभोग करता है, उसे वही उसका लाभ है। ये बातें अंदर ही अंदर घटानी है, परंतु बाह्य पदार्थों की अपेक्षा जो कथन किया है वो उपचार मात्र जानना। आगे, जो सो तदुभय पच्छयो जीव भाव बंधो नाम तस्य इमो निर्देशो, खवो समयम एइंद्रिय लद्धिति वा खवो समयम बीइंद्रिय लद्धिति वा खवो समयम तीइंद्रिय लद्धिति वा खवो समयम चौरिंद्रिय लद्धिति वा खवो समयम पंचिंद्रिय लद्धिति वा खवो समयम मदि अन्नानिति वा खवो समयम सुद अन्नानिति वा खवो समयम विहंग नानित्ति वा खवो समयम आभिनिभूय नानित्ति वा खवो समयम सुद नानित्ति। टी डबल हुआ 18 पेज पर प्राकृत में अंतिम लाइन पहला शब्द ती, वा खवो समयम ओहि नानित्ति वा खवो समयम मणपज्जव नानित्ति वा खवो समयम। ये समझ में आ रहा है कौन से भाव चल रहे हैं? क्षायक श्रमिक भाव। तो क्षायक श्रमिक भाव में वो तो लब्धि को लिया है, केंद्रीय लब्धि द्वींद्रीय लब्धि, वो जो ज्ञान का उघाड़ है उसकी अपेक्षा। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, मन पज्जव नानित्ति वा खवो समयम चक्षु दंशनित्ति वा खवो समयम अचक्षु दंशनित्ति वा खवो समयम ओहि दंशनित्ति वा खवो समयम सम्मा मिच्छत्त लब्धित्ति वा खवो समयम सम्मत्त लब्धित्ति वा खवो समयम संजमा संजम लब्धित्ति वा खवो समयम संजम लब्धित्ति वा खवो समयम दान लब्धित्ति वा खवो समयम लाह लब्धित्ति वा खवो समयम भोग लब्धित्ति वा खवो समयम परिभोग लब्धित्ति वा खवो समयम वीर्य लब्धित्ति वा खवो समयम से आयार धरेत्ति वा खवो समयम सुदयड धरेत्ति वा खवो समयम ठाण धरेत्ति वा खवो समयम समवाय धरेत्ति वा खवो समयम व्याह पन्नति धरेत्ति वा खवो समयम नाह धम्म धरेत्ति। ये किसके नाम चल रहे अभी? हाँ, अंगों के नाम। देखो यहाँ से ना, अभी जो पढ़ रहे उससे चौथी लाइन ऊपर, आयार धरेत्ति यानी आचारांग के धारक, सूत्रांग ठाणांग समवायांग नाथ धर्म कथा वो विहाय पंडित वगैरह वगैरह। अब आगे पढ़ेंगे, खवो समयम उवासय झेण धरेत्ति, उपासकाध्ययन, ये अंगों के नाम चल रहे हैं। पृष्ठ 19 प्राकृत पढ़ रहे हैं, प्राकृत में नीचे से सातवीं लाइन, अभी छठे में आए। वा खवो समयम अंतयड धरेत्ति वा खवो समयम अनुत्तरो वादीय दश धरेत्ति वा खवो समयम पन्नवागधरण धरेत्ति वा खवो समयम विभाग सुत्त धरेत्ति वा खवो समयम यम चाहिए, समीमम हुआ है ना, नीचे से चौथी लाइन, खवो समयम दिट्ठिवाद धरेत्ति। दृष्टिवाद कितने नंबर का है? 12वां। हाँ, वा खवो समयम गणित्ति वा सवो खवो समयम वाचगेत्ति वा खवो समयम दस पूव हरेत्ति वा खवो समयम चौदस पूव हरेत्ति वा जे चामण्ये एवं आदिया खवो समय भावा सो सवो तदुभय पच्चयो जीव भाव बंधो नाम। ये तदुभय प्रत्यय का अर्थ होता है, ये सारे क्षयोपशमिक। एक हमने देखा था विपाक प्रत्यय यानी उदय में होने वाले, अविपाक प्रत्येक यानी उपशम और क्षय के साथ होने वाले जीव के भाव, उसको जीव भाव बंध कहा। और यहाँ जो तदुभय प्रत्येक दोनों यानी क्षयोपशम की बात चल रही है। अब हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे, जो तदुभय प्रत्येक जीव भाव बंध है उसका निर्देश इस प्रकार है। जितने जितने क्षयोपशमिक भाव है वो सब यहाँ गिना है। क्षयोपशमिक एकेंद्रीय लब्धि, एकेंद्रियों का जो ज्ञान है ना उसको भी, जो क्षयोपशम ज्ञान है उसको भी एकेंद्रीय लब्धि कहा है यहाँ पर। क्षायोपशमिक द्विंद्रिय लब्धि, ये ध बराबर करना। क्षायोपशमिक त्रिंद्रिय लब्धि, क्षायोपशमिक चतुरिंद्रिय लब्धि, क्षायोपशमिक पंचेंद्रिय लब्धि, क्षायोपशमिक मति अज्ञानी, क्षायोपशमिक श्रुत अज्ञानी, क्षायोपशमिक विभंग ज्ञानी, क्षायोपशमिक आविनिबोधिक ज्ञानी, क्षायोपशमिक श्रुत ज्ञानी, क्षायोपशमिक अवधि ज्ञानी, क्षायोपशमिक मनपर्य ज्ञानी, क्षायोपशमिक चक्षुदर्शनी, क्षायोपशमिक अचक्षुदर्शनी, क्षायोपशमिक अवधि दर्शनी। केवल दर्शनी क्यों नहीं लिए? वो क्षायिक है। अच्छा, और निद्राओं को क्यों नहीं लिया? हाँ, वो सर्वघाती है, उसका क्षोभशम नहीं होता, या तो उदय होगा या क्षय होगा उसका। क्षायोपशमिक सम्यक मिथ्यात्व लब्धि, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान जो है उसमें भी ये क्षायोपशमिक भाव है। ये लब्धि में जरा अलग से लिखा है, इसको ध और द किया है, खाली ध चाहिए। बर्ध चाहिए। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व लब्धि, क्षायोपशमिक संयमा संयम लब्धि, क्षायोपशमिक संयम लब्धि, क्षायोपशमिक दान लब्धि, क्षायोपशमिक लाभ लब्धि, क्षायोपशमिक भोग लब्धि, क्षायोपशमिक परिभोग लब्धि, क्षायोपशमिक वीर्य लब्धि, क्षायोपशमिक आचारधर, आचारधर ने आचारांग का जो धारक है, ज्ञाता है, उसको आचार धर का। क्षायोपशमिक सूत्रकृत धर, त और ध का वो ध हो गया, सूत्रकृत धर बराबर है, वो धर बराबर है शब्द। क्षायोपशमिक स्थान धर, क्षायोपशमिक समवाय धर, क्षायोपशमिक व्याख्या प्रज्ञप्ति धर, क्षायोपशमिक नाथ धर्म धर। ये नाथ धर्म कथा का दूसरा नाम मालूम है? छठा अंग है ना, उसके दो नाम है। बहुत अच्छा, ज्ञातृ धर्म कथा, नाथ धर्मधर। क्षायोपशमिक उपासकाध्ययन धर, क्षायोपशमिक अंतकृत धर, उसका नाम है अंतकृत दशांग, पूरा जो अंग है ना उसका नाम है अंतकृत दशांग। अंतकृत केवली जो होते हैं, दस दस अंतकृत केवली, उसकी वहां बात होती है। ये उपसर्ग सहित होते हैं ना केवल ज्ञान में। क्षायोपशमिक अनुत्तरोपपादिक दशधर, ये अनुत्तरोपपादिक दश जो है उस अंग में किसका वर्णन है? ये अनुत्तर विमान में उत्पन्न होने वाले, उपसर्ग है, फिर वो श्रेणी में मरकर अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते, उसकी बात है। ऐसे भी दस दस होते हर एक तीर्थंकर के काल में, उनका इसमें वर्णन आता है। क्षायोपशमिक प्रश्न व्याकरण धर, क्षायोपशमिक विपाक सूत्रधर, क्षायोपशमिक दृष्टिवाद धर, ये बारह अंगों के आगे धर यानी धारक जीव लिए। क्षायोपशमिक गणी, क्षायोपशमिक वाचक, क्षायोपशमिक दशपूर्वधर, क्षायोपशमिक चतुर्दशपूर्वधर, ये तथा इसी प्रकार के और भी दूसरे जो क्षायोपशमिक भाव हैं, वह सब मिलकर उसको क्या नाम है? तदुभय प्रत्ययिक जीव भाव बंध। ये सारे क्षायोपशमिक जितने भाव है उतने सब गिनाए। हाँ, गणी उसकी यहाँ होगी शायद बात, आगे गणधर को ही कहा है, यानी वो हाँ नहीं नहीं देखो आगे के प्रश्न। 11 अंग का ज्ञाता गणी कहलाता है, और 12 अंग का ज्ञाता वाचक कहलाता है। पृष्ठ संख्या 22 पर आई है बात, नीचे से जो विशेषात लिखा है उससे ऊपर तीसरी लाइन 22 पृष्ठ पर, नीचे विशेषार्थ लिखा है ना उसके ऊपर तीसरी लाइन, यानी कितने अंगों का ज्ञाता है उसकी अपेक्षा उसको नाम दिए, 10 पूर्व का और 14 पूर्व का, ये अलग अलग है ना। पहले 10 पूर्वी होगा और फिर 14 पूर्व का ज्ञान प्रकट होगा, उसको 14 पूर्वी कहलाएंगे। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। ये जो जो शब्द आए उसकी बात हम यहाँ बताएंगे। ये जो गणी और वाचक है वो पृष्ठ संख्या 22 पर उसका अर्थ आ गया है। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं यथा। इस सूत्र में सब वा शब्द समुच्चय रूप अर्थ में जानने चाहिए। वाने और के अर्थ में है। वा का अर्थ अथवा ऐसा नहीं समझना। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यह कहो या समय ज्ञान चंद्रिका में भी वा शब्द और अर्थ में ही आया है। कहीं कहीं अथवा अर्थ में भी युक्त होता है परंतु वो यथा योग्य समझना चाहिए उसमें। एकेंद्रिय लब्धि यह भी क्षयोपशमिक है क्योंकि वह स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होती है। द्विंद्रिय लब्धि यह भी क्षयोपशमिक है क्योंकि वह जिह्वा और स्पर्शन इंद्रियावरण कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होती है। ये इंद्रियावरण वो पूरा एक शब्द बराबर करना। तीन्द्रिय लब्धि यह भी क्षयोपशमिक है क्योंकि यह जिह्वा स्पर्शन और घ्राण करो उसको घ्राण दिख रहा है इंद्रियावरण कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होती है। चतुरिंद्रिय लब्धि भी क्षयोपशमिक है क्योंकि वह जिह्वा स्पर्शन घ्राण और चक्षु इंद्रियावरण कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होती है। पंचेंद्रिय लब्धि प के ऊपर बिंदी लगाना। पंचेंद्रिय लब्धि यह भी क्षयोपशमिक है क्योंकि यह पांचों इंद्रियावरण कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होती है। मत्य ज्ञानी का अर्थ होता है मति अज्ञानी। यह भी क्षयोपशमिक है क्योंकि यह मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। एक्चुअली कहीं कहीं मत्य ज्ञानावरण भी लिखा है ना, उसके लिए ऊपर क्या लिखा है मदी नानावरण कहो समय ने समुपत्ति है। ठीक है हाँ। शंका हाँ, श के ऊपर बिंदी बराबर स्पष्ट करना। यह मति अज्ञानित्व मत्य ज्ञानित्व है ना, तदुभय प्रत्यय कैसे है, यानी उसको आप क्षोपशम क्यों कहते हो। समाधान, मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से तथा ज्ञानावरणीय के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से और उसी के सर्वघाती, उसी के यानी ज्ञानावरणीय के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय होने से मत्य ज्ञानित्व की उत्पत्ति होती है, इसलिए वह तदुभय प्रत्ययिक है। देखो यहाँ जो मति ज्ञानावरण का ही क्षोभशम चल रहा है परंतु साथ में मिथ्यात्व के देशघाती का उदय चल, सॉरी मिथ्यात्व में देशघाती होते ही नहीं, सर्वघाती का उदय चल रहा है। यहाँ श्रुत ज्ञानी लिखा है परंतु श्रुता ज्ञानी चाहिए। शुद्ध अन्नानी लिखा है ना ऊपर, श्रुता ज्ञानी कहो या श्रुत अज्ञानी कहो। श्रुत अज्ञानी तदुभय प्रत्येक जीवभावंद है क्योंकि यह मिथ्यात्व कर्म के उदय से युक्त श्रुत ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न होता है। साथ में मिथ्यात्व कर्म का उदय है। अब विभंग ज्ञानी तदुभय प्रत्येक जीवभावंद है क्योंकि मिथ्यात्व से युक्त अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों के उदय से इसकी उत्पत्ति होती है। अभिनिबोधिक ज्ञानी तदुभय प्रत्येक जीवभाव बंध है क्योंकि तीन प्रकार के सम्यक्त्व से युक्त, ये तीन प्रकार कौन से है, सम्यक्त्व के तीन प्रकार पूछे ना, औपशमिक क्षयोपशमिक और क्षयिक, वो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व वो दर्शन मोहनी के तीन बार बताए उन्होंने। ये सम्यक्त्व की बात चल रही है ना, तीन प्रकार के सम्यक्त्व से युक्त अभिनिबोधिक की बात है, सुमति ज्ञान की बात। हाँ एक केंद्रीय में हाँ स्पर्शन इंद्रियावरण का तो क्षोभशम है और अन्य के तो सर्वघाती का उदय है। सर्वघाती का उदय अन्य इंद्रियों संबंधी जो मति ज्ञान है उसका सर्वघाती का उदय चल रहा है। स्पर्शन इंद्रिय का देशघाती प्रकृति है उसमें भी सर्वघाती देशघाती है तो स्पर्शन इंद्रिय का वहां क्षोभशम चल रहा है क्योंकि पूरा स्पर्श को तो नहीं जानते ना उसकी भी लिमिट है ना। जैसे एक इंद्रियों में इतने धनुष तक जानते हैं द्विंद्रिय में वो 400-800 ऐसा वो बढ़ते हुए देखो अभी निबोधि को क्यों कहा तीन प्रकार के सम्यक से युक्त मति ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों के उदय से इसकी उत्पत्ति होती है। शंका अभिनिबोधि ज्ञान के उदय प्रत्येकपना बन जाता है क्योंकि मति ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों के उदय से इसकी उत्पत्ति होती है पर औपशमिक निमित्तकपना नहीं बनता क्योंकि मति ज्ञानावरण कर्म का उपशम नहीं पाया जाता। समाधान नहीं क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उपशम संज्ञा वाले उदयाभाव से अभिनिबोधि ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती। क्या कहना चाहते हैं जब मति ज्ञान शुरू चल रहा है हमारा अभी आपका सबका मति ज्ञान चल रहा है तो क्या हो रहा है मति ज्ञानावरण का क्षोभशम चल रहा है हाँ तो वहां ज्ञानावरण का उपशम है कि नहीं है तो हम कहते ज्ञानावरण का उसके सर्वघाती का उपशम चल रहा है। कैसे देखो ज्ञानावरणी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उपशम संज्ञा वाले उदयाभाव उपशम संज्ञा वाला उदयाभाव उदय का अभाव किस रूप से सर्वघाती का उदय नहीं है सर्वघाती रूप से उदय का अभाव उसको वो भविष्य में है ना पड़े हुए उस रूप से उदय में नहीं आ रहे हैं और उसी को उदयाभावी क्षय भी कहा है और उदयाभावी उपशम भी कहा है इसलिए इसका उपशमिक निमित्तकपना भी बन जाता है क्षयोपशमिक है ना। देखो ऊपर क्या लिखा है अभिनिबोधि ज्ञान के उदय प्रत्येकपना बन जाता है। उदय प्रत्येकपना कैसे बना क्योंकि देशघाती का उदय है तो उपशम प्रत्येक कैसे बनेगा सर्वघाती का हाँ उदय नहीं होना उदयाभाव रूप उपशम है। इसी प्रकार श्रुतज्ञानी अवधिज्ञानी मनपरे ज्ञानी चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी और अवधिदर्शनी आदि का कथन करना चाहिए क्योंकि उपयुक्त कथन से इनके कथन में कोई विशेषता नहीं है। देखो ये दोनों में अवधि ज्ञान ये सॉरी मत अभिनिबोधि ज्ञान हो या मति अज्ञान हो दोनों में मति ज्ञानावरण का ही क्षोभशम बताया है। वो मिथ्यात्व के उदय से संयुक्त है और ये मिथ्यात्व का उदय नहीं है। यहाँ पर तीनों प्रकार का सम्यक तो चल रहा है ये दोनों में डिफरेंस बताया। सम्यक मिथ्यात्व लब्धि क्षोभशमिक है क्योंकि वह सम्यक मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न होती है। शंका सम्यक मिथ्यात्व कर्म के स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं इसलिए इनके उदय से उत्पन्न हुआ सम्यक मिथ्यात्व उभय प्रत्येक कैसे हो सकता है। समझ में इसको क्षोभशम क्यों कहते हो क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उदय चल रहा है उसके स्पर्धक कैसे देशघाती के सर्वघाती है सर्वघाती है हाँ क्योंकि वो दोनों सर्वघाती प्रकृति मिथ्यात्व भी और सम्यक मिथ्यात्व भी। अभी उसका समाधान नहीं क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व कर्म के स्पर्धकों का उदय सर्वघाती नहीं होता। समाधान वह किस प्रमाण से जाना जाता है उसका समाधान क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व में सम्यक्त्व रूप अंश की उत्पत्ति अन्यथा बन नहीं सकती। इससे मालूम पड़ता है कि सम्यक मिथ्यात्व कर्म के स्पर्धकों का उदय सर्वघाती नहीं होता। सम्यक मिथ्यात्व के देशघाती स्पर्धकों के उदय से उसमें भी देशघाती कहे हो हाँ तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व के देशघाती का उदय कहा, ये अपेक्षा पहले नहीं बताई कहीं, उसी के सर्वघाती स्पर्धकों के उपशम संज्ञा वाले उदयाभाव से। प्रकृति तो सर्वघाती है अभी यहाँ पर, परंतु यहाँ स्पर्धक दो प्रकार के, उल्टा हो गया ना भैया, देशघाती में देशघाती प्रकृतियों में दोनों स्पर्धक होते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, सम्यक मिथ्यात्व के देशघाती स्पर्धकों के उदय से और उसी के सर्वघाती स्पर्धकों के उपशम संज्ञा वाले उदयाभाव से सम्यक मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है, इसलिए वह तदुभय प्रत्यय कहा गया है। पहले हमने पढ़ा था, तो इसको क्षोपशम घटित किया था, परंतु अलग रीति से किया था। आगे बढ़ सम्यक्त्व लब्धि क्षोपशमित है क्योंकि वह सम्यक प्रकृति के उदय से उत्पन्न होती है। शंका, सम्यक प्रकृति के स्पर्धक देशघाती ही होते हैं, उसके उदय से उत्पन्न हुआ सम्यक्त्व उभय प्रत्यय कैसे हो सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व के देशघाती स्पर्धकों के उदय से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है, इसलिए तो वह औदयिक है और वह औषमिक भी है, क्योंकि वहां सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं पाया जाता। उसमें भी दोनों है, यानी क्षय और उदय दोनों उन्होंने घटित किया। सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी का एक भेद है, उसके सर्वघाती रूप से उपशम को प्राप्त हुए और देशघाती रूप से उदय को प्राप्त हुए स्पर्धकों का वेदक सम्यक्त्व कार्य है। जैसे हम ज्ञानावरण पर घटित करते हैं, देशघाती प्रकृति है मति ज्ञानावरण, तो उसके सर्वघाती स्पर्धक उपशमित रहते हैं और उदय देशघाती का चल रहा है, वैसे इसमें भी ये प्रकृति तो देशघाती है, उसमें भी सर्वघाती और देशघाती ऐसे दोनों स्पर्धक पाए जाते हैं। यह उक्त कथन का त हो गया, कथन का तात्पर्य है। इस अर्थ की पहले के और आगे के सब पदों में योजना करनी चाहिए, क्योंकि उभय निमित्तक भावों में इसी की प्रधानता है। किसकी प्रधानता? सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय। इसी प्रकार संयमा संयम लब्धि, संयम लब्धि, दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, परिभोग लब्धि और वीर्य लब्धि को भी तदुभय प्रत्यय कहना चाहिए। आचार धर तदुभय प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि आचार श्रुत ज्ञानावरण के अभी जो ज्ञान है उस संबंधी, जो जैसे हम घटित करते हैं जर्मन भाषा ज्ञानावरणीय, उसको जानते तो उसका वहां क्षोभशम चलेगा, क्योंकि आचार श्रुत ज्ञानावरण के सर्वघाती रूप से उपशम को प्राप्त हुए देशघाती स्पर्धकों के उदय से आचार शुद्ध की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार दृष्टिवाद धर तक के सब पदों को जानकर व्याख्यान करना चाहिए, यानी एक एक अंग की बात ली है अलग अलग। अंगधारी होते हैं ना, तो कौन सा अंग का धारक है उसकी अपेक्षा वहां तक सबको समझना। 11 अंग का ज्ञाता गणी कहलाता है, कहलाता करो, कहलता धन हुआ है। हाँ, वहां प्रत्याख्यानावरण में लगाना, प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है ना, तो उसमें घटित किया। पहले भी ये बात आई थी वहां, तो हम तो क्षाप्षमिक भाव में तो गिनाते हैं ना सही स्वयं को, क्योंकि वहां प्रश्न भी पूछा था कि प्रत्याख्यानावरण तो सर्वघाती प्रकृति है, परंतु यहाँ कुछ संयम प्रकट है और कुछ असंयम है, इस अपेक्षा से वहां क्षोभशमिक भाव घटित किया। अब यहाँ तो वो उसी प्रकृति में देशघाती सर्वघाती स्पर्धा घटित कर रहे हैं। यानी प्रत्याख्यानावरण का उदय पहले गुणस्थान वाले को चौथे गुणस्थान वाले को भी है. हाँ, तो सर्वघाती रूप से इस तरह से समझना. इस प्रकार ये क्षयोपशमिक भाव, ये पढ़ा था ना, ग्यारह अंग का ज्ञाता गणी, बारह अंग का ज्ञाता वाचक कहलाता है. इस प्रकार ये क्षयोपशमिक भाव और अति सूक्ष्म दूसरे भी क्षयोपशमिक भाव तदुभय प्रत्येक जीव भाव बंद है. उनमें ये थोड़े गिनाए यहाँ पर, बाकी भी जितने हैं उतने सब आप समझ लेना ऐसे कहते हैं. विशेषार्थ यहाँ पर क्षयोपशमिक भाव के भेद बहुत विस्तार से किए गए हैं, फिर भी तत्वार सूत्र में इस भाव के जितने भेद किए गए हैं उनमें इन सब भावों का अंतर्भाव हो जाता है. क्योंकि तीन अज्ञान और चार ज्ञान में तो ये सभी बातें आई ना अलग, यहाँ तो ज्ञान में वो विस्तार से लिया है. ये सारी एकेंद्रियादि लब्धि जो है वो उसी की अपेक्षा से बात है. ये तो सारी हम जीव बंध की बात देख रहे थे. अभी तीन प्रकार के जीव बंध देखे. ये कौन से बंध की बात चल रही थी? भाव बंध की. और भाव बंध में भी कौन सा? नो आगम भाव बंध. अब अजीव बंध चलेगा. जो सो अजीव भाव बंधो नाम सो तिविहो विवाग पच्चयो अजीव भाव बंधो चेव अविवाग पच्चयो अजीव भाव बंधो चेव तदुभय पच्चयो अजीव भाव बंधो चेव. चेव चाहिए, चेवम हुआ. नीचे अजीव भाव बंध तीन प्रकार का है. विपाक प्रत्ययिक अजीव भाव बंध, अविपाक प्रत्ययिक अजीव भाव बंध और तदुभय प्रत्ययिक अजीव भाव बंध. मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग से या पुरुष के प्रयत्न से जो अजीव भाव उत्पन्न होते हैं उनकी विपाक प्रत्ययिक अजीव भाव बंध संज्ञा है. जो अजीव भाव मिथ्यात्व आदि कारणों के बिना उत्पन्न होते हैं उनकी अविपाक प्रत्ययिक अजीव भाव बंध संज्ञा है. और जो दोनों चाहिए, दिनों हो गए ना, दोनों ही कारणों से उत्पन्न होते हैं उनकी तदुभय प्रत्ययिक अजीव भाव बंध यह संज्ञा है. देखो जब हमने जीव में विपाक प्रत्येक कहा था तो कर्मों का उदय उदीर्ण आ रही थी. अब यहाँ अजीव में जब विपाक प्रत्येक कह रहे तो जीव के प्रयत्न लिए या जीव के मिथ्यात्व असंयम आदि जो हमने आश्रव जो है उसको यहाँ लिया. इस तरह तीन प्रकार का ही अजीव भाव बंध होता है क्योंकि इनके सिवा अन्य अजीव भाव बंध संभव नहीं है. विशेषार्थ यहाँ जीव भाव बंध के समान अजीव भाव बंध भी तीन प्रकार का बतलाया गया है. यहाँ विपाक से पुरुष का प्रयत्न या उसके मिथ्यात्व आदि भाव लिए गए हैं. हमारे लिए तो कर्म का विपाक है और कर्म के लिए हम विपाक है उसका. इनके निमित्त से, निमित्त है ना वो, इनके निमित्त से पुद्गल की जो रूप रसादी पर्याय या दूसरी अवस्थाएं होती है वे विपाक प्रत्ययिक अजीव भाव बंध कहलाते हैं. जो पुरुष के प्रयत्न के बिना पुद्गल के बंध रूप विविध प्रकार के परिणाम होते हैं वे अविपाक प्रत्ययिक अजीव भाव बंध कहलाते हैं. हाँ, पुरुष के प्रयत्न के बिना होते हैं, यानी कोई अभी आम रखा है और उसका वहां परिणमन चल रहा है या अभी मेघ जा रहे हैं या उसमें जो कलर बदलते उसमें हमने क्या किया? उस नेचुरली हो गए ना कुछ ऐसे, तो प्रयत्न के बिना. अभी इसमें क्या कहते मैंने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ेंगे अभी हम. और तदुभय इन दोनों रूप होते हैं यह उक्त कथन का सार है. अब यहाँ लिस्ट बताएंगे, जो सो विवाग पच्चे अजीव भाव बंधो नाम तस्स इमो निर्देशो पवोग परिणदा वन्ना पवोग परिणदा सद्दा प्रयोग परिणते ने जीव का पुरुष के प्रयत्न से जो परिणत होते हैं ऐसे सद्दा ने शब्द पवोग परिणदा गंधा पवोग परिणदा रसा पवोग परिणदा फासा पवोग परिणदा गदी पवोग परिणदा ओगाहना पवोग परिणदा संठाणा पवोग परिणदा खंदा पवोग परिणदा खंद देसा पवोग परिणदा खंद पदेसा जे चामण्य एवं आदिया पवोग परिणद संयुक्ता भावा सो सौवो विवाग पच्चयो अजीव भाव बंधो नाम। ये हरेक के ऊपर बिंदी आई है, बंधों पच्चयों चाहिए क्या? नहीं, पीछे नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, सवो अविभाग पच्चयो उसमें भी नहीं, आगे विभाग में अविभाग, ये सवो के ऊपर भी बिंदी नहीं चाहिए, विभाग पच्चे ओ के ऊपर भी नहीं चाहिए, बंधो के ऊपर भी नहीं चाहिए। सवो विभाग पच्चयो अजीव भाव बंधो नाम, सूत्र के आखिर के दो तीन शब्द हैं। हम हिंदी में देखते हैं, जो विपाक प्रत्येक अजीव भाव बंध होता है उसका निर्देश इस प्रकार है। प्रयोग परिणत वर्ण, पहले बताया ना पुरुष के प्रयोग से जो होते हैं, प्रयोग परिणत शब्द, प्रयोग परिणत गंध। अब ये जो बोल रहे हैं वो कौन सा है? अजीव भाव बंध है। कौन सा? जीव के प्रयोग, प्रयोग से होते हैं, प्रयत्न से हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे वो विपाक प्रत्येक। प्रयोग परिणत रस, प्रयोग परिणत स्पर्श, प्रयोग परिणत गति, प्रयोग परिणत अवगाहना, प्रयोग परिणत संस्थान, प्रयोग परिणत स्कंध, प्रयोग परिणत स्कंध देश। ये स्कंध किसको कहना और स्कंध देश किसको कहना? हाँ, अरविंद भाई ने ऐसे कर दिया क्रॉस। स्कंध के आधे को स्कंध देश कहते हैं, स्कंध प्रदेश आगे, और ये आधे के आधे को स्कंध प्रदेश कहते हैं, स्कंध देश कहते हैं। हाँ, अभी वो बड़ा स्कंध है, ये हमने स्लेट देखी, इसके आधे को स्कंध देश कहेंगे और आधे के आधे को स्कंध प्रदेश कहेंगे। हाँ हाँ, जो एक स्कंध है उसकी अपेक्षा ही उसी के आधे को स्कंद देश कहेंगे और आधे के आधे को स्कंद प्रदेश कहेंगे। प्रयोग परिणत स्कंद प्रदेश ये, और सबसे छोटा पार्ट होगा उसको परमाणु कहते हैं ये, और इनसे लेकर जो दूसरे भी प्रयोग परिणत संयुक्त भाव होते हैं वह सब विपाक प्रत्येक अजीव भाव बंध है। वर्ण नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर के स्कंधों में उत्पन्न हुए वर्ण प्रयोग परिणत वर्ण है, या नाम कर्म का उदय भी लिया ना वहां पर, क्योंकि वो भी उसके लिए निमित्त है, निमित्त से हुए की बात चल रही, अकेले जीव का ही निमित्त ऐसा नहीं, औदारिक शरीर है और उसके लिए निमित्त क्या हुआ? वो कारमाण का उदय, कर्म का उदय है ना, अन्य द्रव्य का उसमें निमित्त है, तो उसको भी विपाक प्रत्येक ले लिया। या हल्दी के और चुने के योग से, अथवा पूग फल और पर्ण चूर्ण के योग से उत्पन्न हुए वर्ण भी प्रयोग परिणत वर्ण है। हल्दी पीली है और चूना सफेद है, हमने उसको मिक्स किया तो लाल वर्ण हो गया, है ना? देखा है ना आपने कभी? क्या नहीं देखा? अभी हल्दी और साबुन से तो लाल होता है कि नहीं? हल्दी लगती है कपड़े में और साबू लगाते तो वहाँ लाल दिखता है। ऐसे पूग फल और पर्ण चूर्ण जो कुछ है उसके योग से उत्पन्न हुए वर्ण भी प्रयोग परिणत है। शंख, वीणा, बांस, भेरी, पटह, झालर और मृदंग के शब्द और कंठ ओष्ठ आदि से उत्पन्न हुए शब्द भी प्रयोग परिणत शब्द है। ये जो वाद्य जो अलग अलग है, वाद्यों की जो आवाज़, अभी वो कोई उसमें तार छेड़ता है और उसमें से झंकार आता है, तो ये सारे प्रयोग परिणत है। शंख बजाना, हाँ। गंध बनाने की युक्ति का कथन करने वाले शास्त्र में जो विधि कही है उसके अनुसार उत्पन्न किए गए गंध प्रयोग परिणत गंध है। ये सारे अभी अपनी जो बॉटल है फुसफुस वाली, हम यानी ये इतर आदि सारे बनाते हैं। भोजन शास्त्र में कही हुई विधि के अनुसार उत्पन्न किए गए रस प्रयोग परिणत रस है। देखो, कोई तो नेचुरल होते हैं और ये हमने विशिष्ट विधि से बनाए तो वो प्रयोग परिणत रस हो गया, या रस नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुए रस प्रयोग परिणत रस है। स्पर्श नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुए 8 प्रकार के स्पर्श प्रयोग परिणत स्पर्श है, अथवा रुई आदि में संस्कार से जो 8 प्रकार के स्पर्श उत्पन्न किए जाते हैं वे प्रयोग परिणत स्पर्श हैं। ये मुलायम आदि बनाए जाते हैं या कुछ केमिकल डाल के उसको हम सॉफ्ट बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, अब प्रयोग परिणत। लकड़ी, शैल, यंत्र, गोफन और पत्थर आदि की गति प्रयोग परिणत गति है। यानी हम ऐसा फेंकते हैं कहीं दूर तो वो जो उसमें गति आई वो प्रयोग परिणत है। कृत्रिम जिन भवन आदि की अवगाहना प्रयोग परिणत अवगाहना है। बनाए गए काष्ठ, शिला, स्तंभ और तराजू आदि के आकार प्रयोग परिणत संस्थान है। अब इसमें जो कुछ आकार वो सब बना समझ लेना। बनाए गए घट, पिडर, रांजन आदि के भी स्कंध प्रयोग परिणत स्कंध है। ये घटा बनाया, रांजन बड़ा बनाया, वो सारे प्रयोग परिणत है। प्रयोग परिणत स्कंदों का चौथा भाग या तृतीय भाग प्रयोग परिणत स्कंद देश है। ये भी चौथा और तीसरा भी उसमें ले लिया, मैंने आधा बताया था। और भेद को प्राप्त हुए प्रयोग परिणत स्कंदों का चौथा भाग या पांचवा भाग, यानी चौथे भाग तक उसको देश कहेंगे और उसके आगे प्रदेश कहेंगे। ये या इनसे लेकर इसी प्रकार के प्रयोग परिणत जो दूसरे भी संयुक्त भाव है वह सब विपाक प्रत्येक अजीव भाव बंध है। अब उनमें जो अविपाक पच्चय है वो उसको देखेंगे। जो सो अविपाक पच्चयो अजीव भाव बंधो नाम तस्स इमो निर्देशो विससा परिणदा। पहले क्या लिखा था, प्रयोग परिणत, अब क्या कहेंगे, विसरसा परिणत, नेचुरली, बिना किसी के प्रयत्न के। हाँ, जैसे ये हम वीणा आदि का आवाज निकालते हैं तो ये तो प्रयोग परिणत हुआ वाद्यों का, और मेघ गर्जना होती है वो क्या है, वो विसरसा है। विसरसा से नहीं, किसी के प्रयत्न के बिना नेचुरली जो होता है अपने आप होता है वो विसरसा। हाँ, वैसरसिक कहते ना, हाँ, प्रायोगिक और वैसरसिक, भाषा और अभाषा में हमने लिया था इसको। तत्, वितत, सुशीर और घन, और हमने एक नया नाम भी देखा था, घोष। देखो यहाँ देखते हम, जो सो अविवाह पच्चयो अजीव भाव बंधो नाम तस्से इमो निर्देशो, विश्वसा परिणदा वन्ना, विश्वसा परिणदा सद्दा, विश्वसा परिणदा गंधा, विश्वसा परिणदा रसा, विश्वसा परिणदा फासा, विश्वसा परिणदा गदी, विश्वसा परिणदा ओगाहना, विश्वसा परिणदा संठाणा, विश्वसा परिणदा खंदा, विश्वसा परिणदा खंद देसा, विश्वसा परिणदा खंद पदेसा, जे चामण्य एवं आदिया विश्वसा परिणदा संयुक्ता भावा, सो सवो अविवाग पच्चयो अजीव भाव बंधो नामा। हिंदी में देखते हैं इसका अर्थ, जो अविपाक प्रत्येक अजीव भाव बंध है उसका निर्देश इस प्रकार है, वो ना ही किसी कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों में हुए है और ना ही किसी पुरुष के प्रयत्न से। तो कहते विश्रसा परिणत वर्ण, विश्रसा परिणत शब्द, विश्रसा परिणत गंध, विश्रसा परिणत रस, विश्रसा परिणत शब्द स्पर्श, विश्रसा परिणत गति, विश्रसा परिणत अवगाहना, विश्रसा परिणत संस्थान, विश्रसा परिणत स्कंध, विश्रसा परिणत स्कंध देश, विश्रसा परिणत स्कंध प्रदेश, ये और इनसे लेकर इसी प्रकार के विश्रसा परिणत जो दूसरे संयुक्त भाव है वह सब अविपाक प्रत्येक अजीव भाव बंध है। अभी इसके उदाहरण लेके समझाएंगे। अकृत्रिम भवन, अकृत्रिम कहा ना, विमान मेरु, विमान यानी वो देवों के जो विमान होते हैं, मेरु पर्वत, कुल पर्वत, कुल पर्वत किसको कहते मालूम है, कुलाचलों को। हाँ कितने होते हैं वे, संख्या नहीं। हाँ जम्बूद्वीप में कितने कुलाचल है, 6 है। हाँ उसके लिए वो एक देश होता है, फिर एक पर्वत, फिर एक देश, फिर पर्वत, फिर देश, ऐसा है ना। विदेह क्षेत्र के नीचे की ओर 3 और ऊपर की ओर 3, ऐसे हर एक खंड में लेना। जम्बूद्वीप में 6 है, वैसे ही पूर्व पश्चिम, हाँ 5 मेरु है ना, तो हर एक के 6 कुलाचल हो गए, 30 कुलाचल हो गए। देखो आदि के वर्ण, उनकी रचना नहीं लेना, उनका आकार यहाँ नहीं लिया, आकार हमें बाद में लेंगे। उनका जो वर्ण है, या पृथ्वी जल अग्नि और वायु के अकृत्रिम वर्ण, विश्रसा परिणत वर्ण है अकृत्रिम, विश्रसा यानी नेचुरल जिसको हम कहते हैं अकृत्रिम। हाँ हाँ नहीं, जल का अलग अलग अभी वहां भी है ना, उसके भी नाम कर्म का उदय है कि नहीं है। फिर भी यहाँ जो कुछ अकृत्रिम है वो समझ लेना। उसमें बांस आदि मूर्त द्रव्यों के संघर्षण से उत्पन्न हुए शब्द विश्रसा परिणत शब्द है। ये अपने आप आवाज आती है ना इसे, बांस आदि मूर्त द्रव्यों के संघर्षण से उत्पन्न हुए शब्द, जैसे वो हम कहते वो पन्ने हिलते हैं सड़सड़ आवाज आती है, पिंपड़ा जी सड़सड़ आवाज, यानी वो किसी ने बोले नहीं है, वो वृक्ष तो कुछ बोल नहीं रहे, तो फिर भी वो पवन जोर से हवा भी आती है और उसे जूम जूम आवाज आती है ना, तो उसको विश्रसा कहेंगे हम। कस्तूरी कुमकुम अगरू और तमाल पत्र आदि की जो स्वाभाविक गंध होती है वह विश्रसा परिणत गंध है। जम्बू जंबीर पनस और आम्रा आदि फलों के तथा फूल और अंकुर आदि के जो स्वाभाविक रस होते हैं वे विश्रसा परिणत रस है, यानी किसी पुरुष के प्रयत्न से नहीं बने, इतना ही वहां बनना ना। हाँ जम्बू यानी जाम्बूल, रोज सुबह देख रहे हो ना मंदिर के सामने उधर। सफेद सफेद जामुन मैंने देख सुन वो करवंद कहते उसको। अच्छा अच्छा हाँ वो लीची लीची जैसा। हाँ लीची लीची हाँ वो लीची अलग। हाँ अच्छा जो कुछ है हाँ छोटा ऐसा वो देखो जम्बू जंबीर पनस पनस यानी फनस आम्र आदि फलों के तथा फूल और अंकुर आदि के जो स्वाभाविक रस है वे विषरसा परिणत रस है। पद्म और उत्पल आदि के जो स्वाभाविक स्पर्श होते हैं वे विषरसा परिणत स्पर्श हैं। उत्पल का भी अर्थ कमल होता है। हाँ ये अलग अलग टाइप के जो कमल है ना पद्म कहा और उत्पल कहा ये कभी उगते उसके अपेक्षा भी उसके नाम अलग अलग होते हैं। चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र और ताराओं की तथा वायु की जो गति होती है वह विषरसा परिणत गति है। अकृत्रिम भवन विमान और जिनग्रह आदि तथा सिद्ध क्षेत्र के आकाश की जो अवगाहना है वह विषरसा परिणत अवगाहना है। शंका जिन पदार्थों में पूर्व निर्दिष्ट गंध रस और स्पर्श नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुए गंध रस और स्पर्श होते हैं वे अविपाक प्रत्येक नहीं बन सकते। क्या कहा जो मैंने भी बात बताई ना अभी जो फल है पुष्प है उसमें भी उनके नाम कर्म के उदय से हुई है बातें। तो कहते यदि ऐसा है तो इन्हें छोड़कर पुद्गलों के जो स्वाभाविक वर्ण गंध और रस और स्पर्श होते हैं वे यहां पर लेने चाहिए। चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र और तारकाओं के तथा भवन विमान और कुलाचल आदि के जो स्वाभाविक संस्थान होते हैं यहाँ आकारों की बात चल रही है वो विश्रसा परिणत संस्थान है। उन्हीं चंद्र सूर्य के बिंब आदि के जो स्कंद होते हैं वे विश्रसा परिणत स्कंद हैं। स्वभाव से परिणत हुए मेघादिक के स्कंदों के जो स्कंद होते हैं स्कंदों अभी मेघ है तो वो उसके दो भाग हो गए दो अलग अलग हो गए एक बड़ा मेघ था उसमें से दो हो गए छोटे छोटे तो उसको स्कंद देश कहेंगे। वे विश्रसा परिणत स्कंद देश है। मेघ इंद्रधनुष बिजली चंद्र और सूर्य आदि के जो अवयव होते हैं वे विश्रसा परिणत स्कंद प्रदेश है। ये पूर्वोक्त वो ब दिख रहा है और इनसे लेकर इसी प्रकार के विश्रसा परिणत और भी जो संयोग को प्राप्त हुए भाव है वे सब वह सब अविपाक प्रत्येक अजीव भाव बंध है। बंध के इसलिए वो क्योंकि वो संयोग को प्राप्त हुए है ना इकट्ठे हुए हैं स्कंद बने हैं उसका। अब उभय तदुभय ले लेंगे जो सो तदुभय पच्चयो अजीव भाव बंधो नाम तस्य इमो निर्देशो पवो परिणदा वन्ना वन्ना विश्वसा परिणदा पवो परिणदा सद्दा सद्दा विश्वसा परिणदा पवो परिणदा गंधा गंधा विश्वसा परिणदा पवो परिणदा रसा रसा विश्वसा परिणदा पवो परिणदा फासा फासा विश्वसा परिणदा पवो परिणदा गदी गदी विश्वसा परिणदा पवो परिणदा ओगाहना ओगाहना विश्वसा परिणदा पवो परिणदा संठाणा संठाणा विश्वसा परिणदा पवो परिणदा खंदा खंदा विश्वसा परिणदा पवो परिणदा खंद देसा विश्वसा परिणदा पवो परिणदा खंद पदेसा विश्वसा परिणदा जे चामण्ये एवं आदिया पवो विश्वसा परिणदा संयुक्ता भावा सो सवो तदुभय पच्चयो अजीव भाव बंधो नाम यानी विश्रसा और प्रयोग परिणत दोनों का मिला जुला ऐसा नीचे हिंदी में, जो तदुभय प्रत्येक अजीव भाव बंध है उसका निर्देश निर्देश हुआ है, निर्देश इस प्रकार है, प्रयोग परिणत वर्ण और विश्रसा परिणत वर्ण, प्रयोग परिणत शब्द और विश्रसा परिणत शब्द, प्रयोग परिणत गंध और विश्रसा परिणत गंध, प्रयोग परिणत रस और विश्रसा परिणत रस, प्रयोग परिणत स्पर्श और विश्रसा परिणत स्पर्श, प्रयोग परिणत गति और विश्रसा परिणत गति, प्रयोग परिणत अवगाहना और विश्रसा परिणत अवगाहना, प्रयोग परिणत संस्थान और विश्रसा परिणत संस्थान, प्रयोग परिणत स्कंध, प्रयोग परिणत स्कंध देश, विश्रसा परिणत स्कंध देश। इसमें वो रह गया स्कंध में, दोनों लिए नहीं। प्रयोग परिणत स्कंध के आगे विश्रसा और लिखा, और विश्रसा परिणत स्कंध, प्रयोग परिणत स्कंध के आगे और विश्रसा परिणत स्कंध, हाँ कॉमा के पहले उस डालना है उसको, प्रयोग परिणत स्कंध देश और विश्रसा परिणत स्कंध देश, प्रयोग परिणत स्कंध प्रदेश और विश्रसा परिणत स्कंध प्रदेश, ये और इनसे लेकर प्रयोग और विश्रसा भी हुआ है, विश्रसा परिणत जितने भी संयुक्त भाव है, दोनों है ना उसमें, प्रयोग परिणत और विश्रसा परिणत, वह सब तदुभय प्रत्येक अजीव भाव बंध है। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, प्रयोग परिणत स्कंधों के वर्णों के साथ विश्रसा परिणत स्कंधों के वर्णों का जो संयोग होता है वह तदुभय प्रत्येक अजीव भाव बंध है। शंका, यहां कौन सा संबंध लिया गया है? उसका समाधान, संबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं ना, कौन से होते हैं, नित्य तादात में होते, अनित्य तादात में होते, संश्लेष संबंध होते, एक क्षेत्र संबंध होते, संश्लेष है और ये संयोग संबंध है, समवाय संबंध है, वैसे संबंध ही देखना है तो वो तो गेयक वगैरह वो नहीं लगाना, निमित्त निमित्तिक तो यहाँ कौन सा संबंध लिया गया है, वहां संयोग कौन सा होता है, ऐसा पूछा था ना। समाधान, संयोग संबंध और समवाय संबंध दोनों लिए गए हैं। संयोग दो प्रकार का है, अब यहां समझा रहे हैं, देश प्रत्यासत्तीकृत संयोग संबंध, प्रत्यासत्ती शब्द हमने पहले देखा था, क्या अर्थ था उसका, नजदीकता, काल प्रत्यासत्ति निमित्त नैमित्तिक संबंध में लगाते, एक ही समय में होता है, है ना, प्रत्यासत्ति यानी नजदीकता। तो देश प्रत्यासत्तीकृत संयोग संबंध यानी वो इकट्ठे नजदीक आए हैं, और गुण प्रत्यासत्तीकृत संयोग संबंध, देश प्रत्यासत्तीकृत का अर्थ है दो द्रव्यों के अवयवों का संबंध संबद्ध होकर रहना, यानी उनके पार्ट्स नजदीक आकर रहना, उनके अवयव यानी क्या, दो स्कंदों के कुछ प्रदेश इकट्ठे रहना, यह देश प्रत्यासत्तीकृत संयोग है। गुणों के द्वारा जो परस्पर एक दूसरे को ग्रहण करना वह गुण प्रत्यासत्तीकृत संयोग संबंध है। समवाय संबंध सुगम है। इसी प्रकार शब्द गंध रस स्पर्श अवगाहना संस्थान गति स्कंद स्कंद देश और स्कंद प्रदेश, इनका यथासंभव द्विसंयोगी कथन करना चाहिए, यह कथन सुगम है। द्विसंयोगी ने संयोग संबंध और समवाय संबंध जो जहाँ जैसे पॉसिबल है वैसे वहाँ समझना। शब्दों में जो हम देखते हैं कौन सा प्रयोग परिणत और विश्र सोच है। अभी वाद्यों के साथ जो कोई नेचुरल आवाजें हैं उसमें आप वाद्यों के साथ उसको ले लो तो उसका हो जाएगा। या एक अभी प्रयोग में ही प्रयोग को हम देखते हैं, अनेक वाद्य एक साथ बजाते हैं, उसका कोई म्यूजिक तैयार हुआ। अभी उसी के आवाज अन्य आवाजों के साथ उसको, अगर वो पानी बह रहा है या जो कोई हवा हवा जोर से चल रही है और उसके साथ जैसे आवाज आ रही है हवा की और सीटी भी बजा उसके साथ, आप दोनों एक साथ हो रहे हैं। अभी ये तो मैंने बताया, जो कुछ पॉसिबल है वो समझ लेना। जो सो थप्पो दव्व बंधो नाम सो दुई हो आगम आगम दो चाहिए ना, आगम तो नहीं होता, नो आगम दो दव्व बंधो दो चाहिए। हमने थप्पो किया था ना द्रव्य बंध को, कहाँ किया था देखो, क्योंकि भाव बंध की बात हमने दी थी, देखो सात पेज पर दसवें नंबर के सूत्र में वहां लिखा था जो सो दव्व बंधो नाम सो थप्पो, उसको स्थगित किया था वहां दसवें सूत्र में नीचे है ना हिंदी में, वो स्थापित किया ऐसे लिखा है ना, वो स्थगित करो शंका में, दसवां सूत्र हिंदी में पेज नंबर सात, वो किया है आपने स्थगित मंजू बेन के लिए बताए। हाँ अब हम हाँ तो वहां भाव बंध की पहली बात बतानी थी, आगम भाव बंध और नो आगम भाव बंध, उसमें भी जीव पर भी घटाया और अजीव पर भी घटाया। अब यहाँ जो द्रव्य बंध जो निक्षेपों की बात चल रही थी उसमें से जो द्रव्य बंध है उसकी बात अब करेंगे। ऊपर करेक्शन किया, जो सो थप्पो दव्व बंधो नाम सो दुवियो आगम दो दव्व बंधो चेव नो आगम दो दव्व बंधो चेव, आगम दो हुआ है ना, आगम थो हुआ है उसको आगम दो करना। जो द्रव्य बंध स्थगित कर आए हैं वह दो प्रकार का है, आगम द्रव्य बंध और नो आगम द्रव्य बंध। हमेशा जो हम निक्षेप लगाते हैं किसी भी चीज पर, आगम और नो आगम द्रव्य में, आगम में क्या समझते हैं हम, उस संबंधी आगम का ज्ञातापन उपयोग से रहित। हाँ देखो इस प्रकार द्रव्य बंध दो प्रकार का ही है क्योंकि इसका अन्य भेद संभव नहीं है। जो सो आगम दो दव्व बंधो नाम तस्स इमो निर्देशो ठिदम जिदम परिजितम वायणोवगदम सुत्त समम अर्थ समम गंथ समम नाम समम घोष समम जा तत्थ वायणा वा पुच्छना वा परिच्छना वा परियठना वा वणुपेहणा वा वणु कहा था कि अणुपेहणा अणु चाहिए हाँ अणु अनुप्रेक्षा है ना अणुपेहण पेहनावा पीछे अणु ही लिखा है ना थय थुदि धम्म कहावा जे चामण्य एवं आदिया अणुवजोगा दव्येत्ति। अणुवयोगा लिखा ना पहले, उपयोग वाला लिया या अनुपयोग वाला लिया, कट्टु जावदिया अणुवजुत्ता भावा सो सव्वो आगमदो दव्व बंधो नाम। हिंदी अर्थ देखते हैं हम इसको, ये स्थित जित उसके हमने बात कल डिटेल से देखी थी। जो आगम द्रव्य बंध है उसका निर्देश इस प्रकार है, स्थित जित परिजित वाचनोपगत सूत्र सम अर्थ सम ग्रंथ सम नाम सम और घोष सम, इनके विषय में, ये तो विषय हो गए और उसमें इसका उपयोग किस रूप से होता है उसके भी प्रकार बताए थे। तो उसमें वाचना पृछना प्रतिच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षणा स्तव स्तुति और धर्मकथा तथा इनसे लेकर जो अन्य अनुपयोग है मैंने इनका नहीं होना उसको अनुपयोग कहें। उनमें द्रव्य निक्षेप रूप से जितने अनुपयुक्त भाव हैं वह सब आगम द्रव्य बंध है। इस सूत्र का अर्थ सुगम है क्योंकि इसका अनेक बार कथन कर आए हैं। ये जो स्थित जित वगैरह इसके भी हमने बहुत बार उसका कल भी हमने उसको पढ़ा था। विशेषार्थ यहाँ आगम के भेद और उनके उपयोग के भेद बताए, उपयोग के प्रकार बतलाकर। ये जो अभी हमने देखा ना सूत्र में मंजूते, ये जो स्थित जित परिजित वाचनोपगत सूत्र सम अर्थ सम देखे हैं वो सब आगम के भेद बताए, शास्त्र के भेद बताए। और आगे जो है वाचना पूछना यानी पढ़ाना या फिर पूछना, प्रश्न पूछना, उसकी अनुप्रेक्षा करना, चिंतन करना, ये उपयोग के भेद बताए। तो ये बतला कर, हाँ हमने सात पर देखे थे। देखो सात से शुरू हुआ था उसके नीचे आठ नौ पृष्ठों पर इसकी विस्तार से चर्चा है। सात आठ और नौ इस सूत्र का अर्थ सुन, ये तो हो गया। आशय यह है, फिर पढ़ती मैं विशेषार्थ। यहाँ आगम के भेद और उनके उपयोग के प्रकार बतलाकर अनुपयुक्त दशा में आगम द्रव्य बंध कहा है। आशय यह है कि बंध विषयक शास्त्र के जितने प्रकार के जानकार है और उनके उपयोग है वे सब जब अनुपयुक्त दशा में रहते हैं तब उनकी आगम द्रव्य बंध संज्ञा होती है। भाव में हमने उपयुक्त दशा देखी थी, उसमें उपयोग वाली दशा देखी थी, यहाँ अनुपयुक्त दशा देखी। जो सो नो आगम दो दव बंधो सो दुवी हो, ये आगम की बात हो गई। अब नो आगम में अभी वो जानने वाला जीव वगैरह वो नहीं लेना है, उससे अन्य जो कुछ हमेशा हम क्या क्या भेद करते थे, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। जो सो नो आगम दो दव बंधो सो दुवी हो, पवो बंदी छे वो विश्वसा बंधो, बंधो चाहिए, पवो बंधो चाहिए। छब्बीस नंबर का सूत्र, पहो बंधो चेव विश्वसा बंधो, पहो यानी प्रयोग, बंधी के बदले बंधो चाहिए, दी के बदले धो। नीचे जो नो आगम द्रव्य बंध है वह दो प्रकार का है, प्रयोग बंध और विश्रसा बंध। इस प्रकार नो आगम द्रव्य बंध दो ही प्रकार का है क्योंकि इसका अन्य भेद संभव नहीं है। जो सो पवो बंधो नाम सो थप्पो, अभी इसको थप्पो करेंगे। जो प्रयोग बंध है वह स्थगित करते हैं क्योंकि आगे इसका बहुत वर्णन करना है, जो लंबा वर्णन ज्यादा है उसको बाद में रखते हैं। जो सो विश्वसा बंधो नाम सो दुवी हो, सादिय विश्वसा बंधो, वी करना दीर दिख रहा है उसको, सादिय विश्वसा बंधो चेव अनादिय विश्वसा बंधो चेव चाहिए, बनती हुआ है बंधो चेव। ऊपर भी 26 में विश्वसा बंधो चेव होना चाहिए था, पीछे देखना जरा। सूत्र 26 पवो बंधो चेव विश्वसा बंधो चेव, चेव शब्द वहां भी डालना। 26 में विश्वसा बंधो लिखा है ना लास्ट वर्ड, उसके आगे चेव शब्द डालना। कहाँ लिखा है, पढ़ो सूत्र पढ़ो। उसके आगे चेव लिख, देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना 28 नंबर का 26 में चेव शब्द लाला हाँ 28 में देखो 28 में करेक्शन किया सादिय विश्वसा बंदो चेव अनादिय विश्वसा आगे क्या लिखा है हाँ उसको बंदो चेव करो जो विश्रसा बंध है वो दो प्रकार का है सादी विश्रसा बंध और अनादि विश्रसा बंध इस प्रकार विश्रसा बंध दो ही प्रकार का है क्योंकि इसका अन्य भेद नहीं पाया जाता हाँ जो सो वो जो दिख रहा है कि जी दिख रहा है जो है तो ठीक है हाँ जो सो सादी विश्रसा बंधो नाम सो थप्पो जो सादी विश्रसा बंध है वह स्थगित करते हैं क्योंकि इसका आगे बहुत वर्णन करना है जो सो अनादिय विश्रसा बंधो नाम सो तिवी हो धम्मथिया अधम्मथिया आगासथिया चेदी जो अनादि विश्रसा बंध है वह तीन प्रकार का है धर्मास्तिक विषयक अधर्मास्तिक विषयक और आकाशास्तिक विषय शंका यहां जीवास्तिक और पुद्गलास्तिक विषय अनादि विश्रसा बंध क्यों नहीं कहा समाधान नहीं क्योंकि उनकी अपनी गमन आदि क्रियाओं का धर्मास्तिक आदि के साथ अनादि से स्वाभाविक संयोग नहीं पाया जाता यदि कहा जाए कि उनका प्रदेश बंध तो अनादि से स्वाभाविक है सो यह बात भी नहीं है क्योंकि ऐसा माना जाएगा तो पुद्गलों में पुद्गलत्व नहीं बनेगा और पुद्गल तथा जीवों के प्रदेशों का भी संयोग और वियोग अनुभव सिद्ध है अतः इनका अनादि विश्रसा बंध नहीं कहा है जीव और पुद्गलों का बंध है वो अनादि का नहीं है अलग अलग पुद्गल बदलते रहते हैं ना इसलिए उसको नहीं लिया है विशेषार्थ यहाँ धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य का अनादि विश्रसा बंध बतलाया है प्रश्न यह है कि ऐसा बंध पुद्गल और जीवों का क्यों नहीं कहा इसका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि एक तो जीव और पुद्गल की जो गति स्थिति और अवगाहना क्रिया होती है वह बदलती रहती है क्योंकि अलग अलग जगह जाके रहते हैं ना और उसका गमन भी होता है दूसरे पुद्गल के परमाणुओं का परस्पर बंध भी अनादिकालीन नहीं बन सकता और तीसरे पुद्गलों और जीवों के प्रदेशों का संयोग और वियोग भी होता रहता है न तो इन दोनों द्रव्यों का अन्य से संयोग अनादि और वैश्रसिक है और न स्वयं अपने प्रदेशों का संयोग भी ऐसा है इसलिए इनके संबंध को अनादि विश्रसा बंध में सम्मिलित नहीं किया माना कि जीव के प्रदेशों में विभाग नहीं होता पर वे सदा धर्मादिक द्रव्यों के समान एक आकार में स्थिर नहीं रहते वो प्रदेशों का विभाग भले नहीं हुए परंतु उनका भी वो चलन चलता है ना इसलिए इसका भी अनादि विश्रसा बंध नहीं माना है तो आकाश को क्यों छोड़ा आकाश नहीं मुझे काल पे आकाश लिए काल को क्यों छोड़ा वो सिंगल सिंगल है ना अलग अभी यहां रुकते हम आगे नया सूत्र लेना है ना जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो प्रेरणा बेन